सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एआई एक्शन सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ पवन दुग्गल और पत्रकार प्रसून श्रीवास्तव।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन समिट को को चेयर करते हुए बोला कि एआई से सबसे बड़ी जो लोगों के अंदर मन में एक भावना है कि सबसे ज्यादा जॉब लॉस होंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जॉब लॉस नहीं होती टेक्नोलॉजी की वजह से, जबकि जो काम है उसका नेचर बदल जाता है और नई जॉब क्रिएट होती है।
लॉस ऑफ जॉब्स इज AI's most feared disruption, but history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future.
तो एक बात उन्होंने ये कही, दूसरी बात एक उन्होंने बड़ी बात कही कि पूरे विश्व को एक साथ आकर के अपनी जो डिपेंडेंस है AI के ऊपर उसको साझा करते हुए एक ऐसे AI मॉडल की को डेवलप करना चाहिए जो कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सके। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अपने जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, वो बहुत ही सस्ते दाम पे उसको बना रखा है और उस अपनी एक्सपर्टीज लोगों के साथ साझा करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं लॉ एंड AI एक्सपर्ट मिस्टर पवन दुग्गल। दुग्गल साहब, आप ये जो प्रधानमंत्री ने आज बोला है कि एक जॉब लॉस के अराउंड लोगों का फियर है, लेकिन डिसरप्शन हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई भी जॉब लॉस नहीं करती है बल्कि नए जॉब क्रिएट कर देती है, आप प्रधानमंत्री जी के इस बात को किस तरह से देखते हैं और क्या आप उसका महत्व समझा पाएंगे कि क्या जॉब लॉस होंगी या नई जॉब बनेंगी हिंदुस्तान में भी?
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ग्लोबल विजनरी लीडर है जिनकी दूरदर्शिता का लोहा पूरी दुनिया भर में माना है। आज जब वो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व की, तो वो लोगों को पुनः से एक एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटी को बताते हैं। हमारे यहाँ मस्तिष्क में एक थॉट प्रोसेस है कि साहब कोई बात नहीं, AI आने वाला है तो AI से तो सभी कुछ जो है लुप्त हो जाएंगी, नौकरियां लुप्त हो जाएंगी, तो इसलिए AI का संपूर्ण विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जब आप ऑलरेडी चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं तो उस पर आंखें बंद करने से सूरज गायब नहीं हो जाता। आज जो है वर्तमान ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, तो इस संदर्भ में जितनी जल्दी हम उसके महत्व को जानेंगे उतना अच्छा होगा। जो गलत धारणाएं अपने दिमाग में है, ठीक है, देखिए कोई भी बदलाव आता है, चेंज आता है, तो उससे कुछ ना कुछ तो चीजें अलग होती हैं। अब ये नया बदलाव आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका सीधा तात्पर्य ये है कि अब नए प्रकार से दुनिया देखेगी कि टेक्नोलॉजी मानवीय जीवन को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बदलाव के साथ साथ नौकरियां कम जाएंगी लेकिन क्षमताएं और ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगी, नए प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक नया प्रकार का इंडस्ट्री खुल गई है, जॉब खुल गया, जिसका नाम है प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग। यानी कि आप किस तरह के कमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देंगे जिसकी वजह से जो जवाब आप चाहते हैं वो जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा ही उदाहरण है। अब जिस तरीके से यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये बात सुनिश्चित तौर पे क्लियर है कि लगभग हर ह्यूमन सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, तो जितनी जल्दी हम उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए अच्छा है। हाँ, लेकिन ये दायित्व तो इंसानों पर है, समाज पर है, राष्ट्रों पर है और राष्ट्रीय सरकारों पर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कहीं ना कहीं मानव मात्र को पीछे ना छोड़ जाए। वो क्या रहा है कि आजकल एक नई आर्म्स रेस आ गई है, नए नए प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स विकसित किए जा रहे हैं और अब तो विकास का स्तर इतना तेज बढ़ गया है कि आप एक दिन सांस लेते हैं दूसरे दिन पता लगता है कि जी दूसरा मॉडल आ गया है। तो जब इतनी मैसिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो आपको समझना होगा कि हम जो अपनी कॉम्प्लेसेंसी वाले मोड में चल रहे हैं उससे बाहर आना होगा। अगर हम सोचते हैं कि हाँ अभी तो कई दशक लगेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेंट्रल सी में लाने के लिए, तो हम गलत सोचते हैं। रीजन ये है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़ दीजिए, सुपर इंटेलिजेंस की बातें करनी शुरू हो रही हैं। उदाहरण के तौर पर आज अगर आप नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति चैट जीपीटी इस्तेमाल करता है तो पाता है कि चैट जीपीटी सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर कंप्यूट है, उसके पास ज्यादा विभिन्न प्रकार के जो नॉलेज सोर्सेज हैं उसके डेटा मौजूद है। लेकिन अब सुपर इंटेलिजेंस आने वाली है, ये वो सुपर इंटेलिजेंस है जो कहीं ना कहीं जब आएगी तो पूरे मानव मात्र को बिल्कुल स्तब्ध कर देगी। क्यों? क्योंकि जो सुपर इंटेलिजेंस होगी वो पूरे मानव मात्र की क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस से ज्यादा परे होगी, ज्यादा तेज होगी। तो आज कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विभिन्न प्रकार की बुनियादी चुनौती हम सबके समक्ष खड़ा कर रहा है। उस चुनौती को डील करने की आवश्यकता है। यही कारणवश है कि आज न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुबारक दी है इस समिट की सफलता को लेकर, बल्कि साथ ही साथ ये AI फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल AI के बारे में जो स्थापना की गई है उसको, उसका स्वागत किया गया है। क्योंकि अब जो थीम भारतवर्ष ले रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि आम व्यक्ति के जीवन में ठोस प्रकार के विभिन्न नए बदलाव नजर आ सके। मुझे लगता है ऑलरेडी पिछले साल
बिल्कुल नए बदलाव की बात अभी हम लोग उस पर धीरे धीरे चर्चा में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसे जॉब की बात कही थी, एक बार हम फिर से जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमको जरूरत है कि हम रीस्किलिंग पे इन्वेस्ट करें, तो अगर रीस्किलिंग की बात करें, बहुत सारे लोग हैं, मुझे ये चीज आप समझाने की कोशिश करिए कि अभी जैसे हमको टाइपिस्ट की जरूरत पड़ती थी कि एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेकिन दस्तावेज लेखक होते हैं कई जगह कचहरियों में जो दस्तावेज लिखते हैं, लेकिन अगर हम देखें AI की मदद से ही, हम बोलते हैं कि एक हमारे मोबाइल लापता होने की एप्लीकेशन लिखो, तो फटाफट लिख देता है कि किसको, अगर आपको थाने पे जमा करना तो एक एप्लीकेशन लिख दे रहा है, कोई आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन लिखना है तो कई सारा काम वो खुद ही कर देता है और आपको प्रिंट का कमांड देना, प्रिंट भी निकल आता है। अब ऐसे लोग जो विस्थापित होंगे AI से, उनकी रीस्किलिंग कैसे हो सकती है?
उनकी रीस्किलिंग के लिए जरूरी है कि एक तो पॉलिटिकल विल रहे, दूसरा सरकार विभिन्न प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लेकर आए, क्योंकि देखिए आज वही दौर आ गया है जो दौर था वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत में। जब इंटरनेट शुरू हुआ था तब लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी कि इंटरनेट को आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने जबरदस्त टूल्स आ गए हैं तो हर सेक्टर में रीस्किलिंग की आवश्यकता है। जो नॉर्मल डिजिटल यूजर्स हैं उन्हें बताने की आवश्यकता है कि साहब आज ये जो नया प्रकार का AI आया है ये आपको किस तरीके से आपके प्रोफेशन में सहायता प्रदान कर सकता है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता होगी, नए प्रोग्राम्स रन करने की जरूरत होगी, जागरूकता अभियान दिलाना पड़ेगा और लोगों को कहीं ना कहीं आगाह भी करना पड़ेगा कि आप अंधाधुंध होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरीके से विश्वास ना करें, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जहां एक और बहुत से सकारात्मक पहलू हैं, वहां दूसरी ओर उसके नकारात्मक पहलू भी हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज झूठ भी बोलता है और जब वो इतने हक से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो स्वयं भी कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में बताना होगा, इनके नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल के बारे में भी अवगत कराना पड़ेगा।
पवन जी, आप बात कर रहे थे कि एक सस्टेनेबल AI की भी बातें होंगी, तो अगर देखा जाए तो AI एक्शन समिट का डिक्लेरेशन भी आ चुका है जिसके हिसाब से AI फाउंडेशन और काउंसिल फॉर सस्टेनेबल AI सेटअप की जाएंगी, तो आप ये जो डिक्लेरेशन है इसका क्या असर देख सकते हैं हिंदुस्तान में या फिर पूरे AI कम्युनिटी के ऊपर?
देखिए ये जो AI समिट की डिक्लेरेशन आई है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की डिक्लेरेशन आज तक मानव मात्र के इतिहास में नहीं आई है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न डिक्लेरेशंस या रेजोल्यूशंस पर दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने एक डिक्लेरेशन पास किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को रिकॉग्नाइज करते हुए। लेकिन अब पहली बार ये डिक्लेरेशन आई है जो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ जोड़ना होगा, और तभी ले जब ये AI फाउंडेशन की बात हो रही है और सस्टेनेबल AI, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षाएं हैं डेवलपिंग राष्ट्रों की उनको प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया गया है इस डिक्लेरेशन में। आज सरकारें ये नहीं चाहती कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंधाधुंध इस्तेमाल हो, सरकारें चाहती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सकारात्मक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके ताकि किसी भी राष्ट्र की प्रगति को और ज्यादा अग्रसर किया जा सके, उसकी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो अब हम पहली बार जब सस्टेनेबल एआई की बात कर रहे हैं तो हम राष्ट्रों की प्रगति, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रगति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी को जोड़ रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण भी हो और जो हमारी जनसंख्याएं हैं उनमें एक सामंजस्य और संतुलन स्थापित किया जाए जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है। अब साथ ही साथ एक भारत ने तो ये भी प्रस्ताव दे दिया है कि अगली मीटिंग भारत इसे होस्ट करना चाहेगा। तो भारत देखिए अब अपनी ग्रूव में आ रहा है, भारत दुनिया भर को दिखा रहा है कि मैं एक थॉट लीडर हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लीगल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी मुद्दों को लेकर। और मुझे लगता है जो साख भारत की है और जो विशेष प्रकार की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बना रखी है, ये दो महत्वपूर्ण ऐसे फैक्टर्स हैं जो भारत को एक नई दिशा में लेकर चले जाएंगे, भारत को एक ग्लोबल थॉट लीडर बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दृष्टिकोण में। और साथ ही साथ जो भारत करेगा वो अक्सर एक मापदंड भी बन जाने वाला है विभिन्न प्रकार की डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ताकि वो इस तरह के मॉडल्स को अडॉप्ट करें। तो अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा है ये डिक्लेरेशन का महत्व। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ ज्यूरिसप्रूडेंस में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इस प्रकार की कोई डिक्लेरेशन कोई कमिटी ऑफ नेशंस ने दी है और अब ये एक टोन स्थापित करेगा कि हम अभी तक हम बात करते थे केवल रिस्पॉन्सिबल एआई की, अभी तक हम बात करते थे ट्रांसपेरेंट एआई की, लेकिन जब आप सस्टेनेबल एआई की बात करते हैं तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानवीय जीवन के हर पहलू से जोड़ने का प्रयास करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और राष्ट्रीय प्रगति के साथ जोड़ने के लिए एक विशिष्ट भूमिका भी बनाते हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आने वाले समय की हमें बताएगा कि इस प्रकार की जो डिक्लेरेशन है उसका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा आने वाले समय में कंट्रीज द्वारा।
प्रधानमंत्री है कि हिंदुस्तान जो अगला एआई एक्शन समिट है उसको होस्ट करेगा और इसको आगे बढ़ाएगा।
देयर इज यूनिटी इन विजन एंड यूनिटी इन पर्पस अक्रॉस स्टेक होल्डर्स। आई वेलकम द डिसीजन टू सेट अप द एआई फाउंडेशन एट द काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई। I congratulate France and my dear friend President Macron for this initiatives and assure our full support. We must also make the global partnership for AI truly global in nature. It should be more inclusive of the global south and its priorities, concerns and needs. To build on the momentum of this action summit, India would be happy to host the next summit.
जैसा कि हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री का विजन है वो काफी विस्तृत विजन है और उन्होंने एक तरह से कहा सीमित शब्दों में घाघर में सागर भर दिया कि एआई कैसा होना चाहिए। उन्होंने ये बता दिया कि जो जॉब लॉस है उसके ऊपर कंसर्न तो होते हैं लेकिन जो टेक्नोलॉजी उसे कोई रोक नहीं आएगी, नई तरह की जॉब पैदा हो जाएंगी। इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे एआई एक्शन सम्मेलन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ पवन दुग्गल और पत्रकार प्रसून श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में